हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बहुत सब्र कर रहा हूँ पर इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, इसलिए मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। अगर अपनी जान से रत्ती भर भी प्यार है तो सच सच बताओ कि धृति कहाँ है, क्योंकि तुम धृति नहीं, ये मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। अर्णव जैसे ही चुप हुआ, सृष्टि ने उसकी नजरों में नजरें मिलाते हुए गुरूर भरे अंदाज में जवाब दिया, हाँ नहीं हूँ मैं धृति, बिल्कुल सही पहचाना है तुमने मुझे, मैं सृष्टि हूँ, सृष्टि अवस्थी। क्या करोगे अब तुम, मारोगे मुझे तो मारो, मुझे अपने अंजाम की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि तुमने वैसे भी मेरा जो हाल किया है उसके बाद मैं जिंदा रहना ही नहीं चाहती, पर मरने से पहले अपनी बर्बादी की वजह को खत्म करके मरूंगी मैं। धृति कहाँ है, अर्णव किसी खूंखार शेर की तरह दहाड़ा। सृष्टि ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी, और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी प्यारी बीवी कहाँ गायब हो गई। उसका जवाब सुनकर अर्णव की भौहें खतरनाक अंदाज में तन गईं। सृष्टि, मैंने पूछा ध्रुति कहाँ है, क्या किया है तुमने उसके साथ, तुम खुद से सच बताती हो या अभी यहीं तुम्हारा खेल खत्म करूं? अर्णव ने ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाते हुए उसे धमकाया, पर सृष्टि के चेहरे पर खौफ का साया भी नजर नहीं आया, मानो उसे ना तो अब अपनी जान की कोई परवाह थी और न ही मौत का खौफ। उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बेखौफ अंदाज में जवाब दिया, मुझे अपने अंजाम की फिक्र नहीं, मेरा जो होना होगा वो तो होगा ही, पर अगर मैं मरूंगी तो बचेगी धृति भी नहीं। बहुत गुरूर था ना तुम्हें अपनी पावर पर, तो जाओ बचा सको तो बचा लो अपनी प्यारी बीवी को, क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, एक खतरनाक दरिंदे के चंगुल में कैद है वो इस वक्त, और तुम्हारी जरा सी देरी उसकी जिंदगी तबाह कर सकती है। अगर तुम उसके पास वक्त से नहीं पहुंचे तो वो दरिंदा तुम्हारी प्यारी बीवी को नोच खाएगा, और इस काली रात में तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे, आखिरी बार उसका चेहरा तक देखना नसीब नहीं होगा तुम्हें। सृष्टि की धमकी सुनकर अर्णव का खून खौल उठा, धृति के लिए ऐसी घटिया बातें सुनकर उसका रोम रोम गुस्से से भर उठा, माथे और बाहों की नसें तन कर उभर आईं और गुस्से में उसने जबड़े भींच लिए। बहन है वो तुम्हारी, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बहन नहीं, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है वो, नफरत करती हूँ मैं उससे, बे इंतहा नफरत करती हूँ, बचपन से वो हर चीज जो मैंने चाही वो उसे मिली, इनोसेंट बनकर उसने हमेशा सबका प्यार हासिल किया, मुझसे ज्यादा सुंदर थी वो तो सबको सिर्फ वही नजर आती थी, सब उसकी तारीफ करते और मैं सबकी आंखों में खटकती थी। उसने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया, मेरा सगा बाप मुझसे नहीं उससे प्यार करता था, कोई मुझे नहीं चाहता था, सब कुछ उसे मिलता था, आज भी जो मैंने हासिल करना चाहा वो सब उसके नाम हो गया, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया तो मैं तो उससे सब कुछ छीन लूंगी, आज मेरी ये हालत उसके कारण है, इसका बदला चुकाना होगा उसे, जैसे तुमने मुझे तबाह किया है मैं उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दूंगी। बहुत चाहते हो ना तुम उसे, पर तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी बीवी कहाँ गायब हो गई, तड़पोगे तुम उसके लिए जैसे तुमने मुझे तड़पाया है, मुझसे कबीर को छीनकर, किसी को चैन से नहीं जीने दूंगी मैं, एक एक से हिसाब लूंगी, अपनी जीत पर तुम सबको बहुत गुरूर था ना, अगर मैंने तुम सबको खून के आंसू न रुलाए तो मेरा नाम भी सृष्टि अवस्थी नहीं। सृष्टि जो गुस्से और बदले की आग में जल रही थी, उसकी आंखों में इस वक्त कुछ कर गुजरने का जुनून झलक रहा था, उसके दिल में अब न सिर्फ धृति बल्कि अर्णव, कबीर और माधुरी के लिए भी बेहिसाब नफरत कैद थी। खतरनाक इरादों के साथ उसने इस बार उनकी जिंदगी में कदम रखा था और उसकी बातों से साफ जाहिर था कि किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अर्णव जो उसकी बातों और धृति के लिए उसकी नफरत देखकर अचंभित था, उसका सब्र अब जवाब दे गया, इससे ज्यादा उससे सहन न हुआ। एक तो धृति गायब थी और सृष्टि उसके बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, उस पर जिस तरह वो सबको बर्बाद करने की धमकी दे रही थी अर्णव को नागवार गुजरा था। अर्णव ने गुस्से से धधकती आंखों से उसे हूरा और गुस्से से दांत कीट किटाते हुए चेतावनी भरे अंदाज में बोला, तो तुम मुझे धृति कहाँ है ये नहीं बताओगी? सृष्टि ने इनकार में सर हिलाते हुए दृढ़ता से जवाब दिया, कभी नहीं बताऊंगी, वैसे भी मैं नहीं जानती कि वो इस वक्त कहाँ है। ठीक है फिर, अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि धृति को तो मैं दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा, पर उसके बाद तुम्हारा जो अंजाम होगा तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकोगी। अर्णव ने खूंखार खूनी लाल आंखों से उसे घूरा और उसकी बांह दबोचते हुए घसीटता हुआ नीचे लेकर जाने लगा। सृष्टि उससे छूटने की खूब कोशिश कर रही थी, पर अर्णव की पकड़ उसकी बांह पर इतनी सख्त थी कि सृष्टि चाहकर भी अपने बच्चे बचाव में कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी बांह में तेज दर्द के साथ टीस उठ रही थी और लग रहा था जैसे वहां से बांह टूट कर गिर जाएगी। वो दर्द से बिलबिला उठी, पर अर्णव पर रत्ती भर असर न पड़ा। उसके सर पर खून सवार था। वो सृष्टि को घसीटते हुए नीचे लाया और उसकी गुस्से भरी कर्कश आवाज पूरे विला में गूंज गई। कबीर, कबीर बाहर आ! उसके गुस्से से विला की दीवारें तक भय से कांप उठीं। बाहर से गार्ड्स दौड़ते हुए अंदर आए तो सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कबीर के साथ बाकी सब भी उसके बार बार चीखने पर अपने अपने कमरों से निकलकर बाहर आए और अर्णव का गुस्सा, धृति की हालत देखकर सभी स्तब्ध रह गए। क्या हुआ अर्णव? कबीर ने अभी इतना ही पूछा था कि दादाजी गुस्से में अर्णव पर भड़क उठे। अर्णव, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या बदतमीजी है ये? तुमने धृति को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है और ये क्या हाल किया है तुमने धृति का? ये धृति नहीं, उसकी जुड़वा बहन सृष्टि है, अर्णव ने बस इतना ही जवाब दिया। फिर कबीर की ओर पलटते हुए बोला, कबीर अभी अपने आदमियों को बुला और बोल लेकर जाए इसे, और जब तक मुंह ना खोले थर्ड डिग्री टॉर्चर दे, और धृति के फोन ही लोकेशन ट्रेस करवा, साथ ही इसका नंबर भी ट्रेस करवा, कॉल हिस्ट्री निकलवा, मुझे शाम से पहले हर हाल में धृति तक पहुँचना है। बाकी सब अर्णव की बात सुनकर शॉक्ड थे, क्योंकि वो धृति की जुड़वा बहन के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। अंजलि जी, जो सब बातों से वाकिफ थीं, उन्होंने बागौर सृष्टि को देखा तो पाया कि वाकई दोनों बहनों में इतनी समानता है कि उनमें अंतर कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। कबीर और माधुरी भी धृति के जगह सृष्टि को यहाँ देखकर शॉक्ड रह गए थे। कबीर ने तुरंत सर हिलाया और किसी को फोन लगाने लगा। दो घंटे बाद, कहाँ है धृति? अभी प्यार से पूछ रहा हूँ, अगर अभी बता दोगी तो फिर भी बच जाओगी, पर अगर अभी तुमने अपना मुँह नहीं खोला और धृति को एक खरोच भी आई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या हश्र करूंगा मैं तुम्हारा। उस कमरे में अर्णव की गुस्से भरी आवाज गूंज उठी। उसके सामने बैठी सृष्टि डर से कांप गई, सर पर मौत तांडव कर रही थी और सामने अर्णव खड़ा था जो खतरनाक इरादों के साथ यहाँ आया था। उसने उसके माथे पर बंदूक तानी हुई थी जिससे सृष्टि सहम गई थी, और एसी लगे कैबिन में होने के बावजूद वो पूरी पसीने से भीग गई थी। मुझे नहीं पता, घबराहट के मारे उसकी जुबान लड़खड़ा गई और शब्द कांप उठे। वहीं उसका जवाब सुनकर अर्णव अपने आप ही से बाहर हो गया और उसके जबड़े को दबोचते हुए बंदूक उसके मुंह में घुसा दी। टू बी कंटिन्यूड।